तब ही बनोगे महान। हर बोझ को उठाना होगा फिर कितना आसान, हर बोझ को उठाना होगा फिर कितना आसान। बांटते चलो खुशियाँ, बांटते चलो खुशियाँ, तब ही बनोगे महान। हर बोझ को उठाना होगा फिर कितना आसान, हर बोझ को उठाना होगा फिर कितना आसान।
ओम शांति। कितना सुंदर गीत बज रहा था। एक एक गीत देखो, उसमें पूरा धारणा का क्लास आ जाता है। हर गीत हमें एक विशेष धारणा करा देता है। लेकिन होता है हम उस भाव से सुने या केवल गीत बज रहा है इसलिए सुन रहे, उसमें फर्क पड़ जाता है। अगर उस भाव से लगन से सुनते हैं तो मस्ती चढ़ जाती है, बाबा के प्रेम में खो जाते हैं। आजकल बाबा बच्चों को मुरली के द्वारा भी भिन्न भिन्न तरीके से तैयार कर रहे हैं। क्योंकि समय बदलता जा रहा है, सिचुएशन बदल रही है, परिस्थितियां तंग होती जाती है, तनाव बढ़ता जा रहा है, भय का वातावरण बढ़ रहा है, इसमें बाबा अपने बच्चों को हर मुरली के द्वारा भिन्न भिन्न तरीके से तैयार कर रहे हैं। आजकल की मुरलियां सुनेंगे ये हफ्ते 15 दिन के अंदर भी ऐसे लगता है बाबा भट्टी के क्लास करवा रहे हैं। कभी कहते मुझे क्रोध रूपी अक का फूल दे दो, कभी बोलते व्यर्थ मुझे गिफ्ट में दे दो। कितनी गिफ्ट मांगा, बहुतों ने दे दिया होगा वो गिफ्ट तो बाबा को। भट्टी करते हैं तो गिफ्ट लेते भी हैं तो देते भी हैं। भट्टी माना लेना और देना दोनों। बहुतों ने संकल्प भी किया होगा ना कि इस भट्टी से हम ये विशेष परिवर्तन करके जाएंगे, ये एक लक्ष्य लेकर के हम भट्टी करते हैं। भट्टी माना क्या, एक ट्यूशन क्लास है। मुरली तो रोज सेंटर पर सुनते हो, पढ़ते हो, कईयों की तो हैबिट होती है, बहुत बार सुनते हैं, मोबाइल में भी वही सुनते रहते हैं। लेकिन भट्टी में बाबा बुलाता है ट्यूशन क्लास के लिए, विशेष उस धारणाओं पर फोकस करने के लिए। मुरली सुनते हुए भी उन धारणाओं पर अटेंशन जाए, उसको हम अंडरलाइन करें तो उस विशेष पुरुषार्थ पर लग जाते हैं। अभी 2-3 दिन पहले बाबा ने कहा सीकी लदा और आज्ञाकारी बच्चा कौन, कौन बोला, किसके लिए बोला सीकी लदा और आज्ञाकारी बच्चा, किसके लिए बोला? जो होमवर्क करता है मुरली से, आज जो मुरली सुनी उसमें जो होमवर्क मिला वो किया, तो बाबा का सिकी लदा बच्चा, आज्ञाकारी बच्चा, ऐसे बोला ना। तो रोज कोई ना कोई होमवर्क तो होता ही है। आज क्या होमवर्क था? दो बातों पर अटेंशन दिलाया, एक तो सेवा के लिए बोला, जैसे कल बोला ना शंख बजाना है, ऐसे आज भी सेवा के लिए बोला, और दूसरा फैशन के लिए बोला, ये सभी को याद है। लेकिन फैशन कहते किसको है ये पता है? फैशन माना मैं कोई भी बात दे अभिमान में रह करके अपना करती हूँ, जिससे लोगों की मेरे तरफ मन बुद्धि और कर्म से आकर्षण होता है, वो फैशन है। कई लोग तो फैशन का डेफिनेशन भी स्थूल रूप से लेते हैं। ऐसा नहीं बाल ढंग से नहीं बनाना, कपड़े मैले पहनना। अरे बाबा ने कहा है ना फैशन नहीं करो, क्यों तैयार होना है। ये नहीं है, ये तो हमारी विद्यालय की डिसिप्लिन है। ठीक ठाक रहना, ढंग से रहना, सुव्यवस्थित रहना, ये तो डिसिप्लिन है। जैसे देखो हम बाहर का नहीं खाते, ये एक हमारी डिसिप्लिन है। हम रोज स्नान करते, ये हमारी डिसिप्लिन है। स्वच्छता इस विद्यालय की मेन डिसिप्लिन है। लोग आते हैं तो क्या बोलते हैं, अरे आपके यहाँ स्वच्छता बहुत अच्छी है, बोलते हैं ना। ये रिमार्क्स किसको मिलता है, विद्यालय की डिसिप्लिन को मिलता है। कई लोग कहते हैं आप लोग कपड़े बहुत साफ पहनते हो, ये विद्यालय की डिसिप्लिन है। एक बार दादी जी थे, बड़े प्रकाशमणि दादी जी इसी सेंटर पर गए, तो वहां बहन थी, तो अचानक गए देखा तो एल्यूमिनियम के बर्तन थे और बहुत ही साधारण सा था। बाबा ने बोला है ना साधारण रहो, दादी जी ने उसको बुलाया इधर। ये बाबा का घर है, एक मंदिर है। जैसे अपने घर को सजा के रखते हो, अपने मंदिर को सजा के रखते हो, तो ये तो बाबा का घर है, बाबा का मंदिर है। कोई हमारे पास आता है, हम उसकी खातिरी करते हैं। ये खातिरी करना कोई फैशन नहीं है, ये हमारा आतिथ्य है, ये हमारा रिस्पेक्ट है। तो फैशन माना स्थूल रूप नहीं है। हर बोल में, हर कर्म में, हर संकल्प में हमारी रॉयल्टी हो। रॉयल्टी कोई फैशन नहीं है। आज ही एक भाई आया हमारे पास, वो बैज लेने आया। कहते हमको एकदम सिंपल, बाबा ने कहा है ना फैशन नहीं करनी है। लेकिन ये तो हमारा सेवा का साधन है। मुझे याद आता है हम लोग जब शुरू शुरू में यहाँ आए ना, तो ये साड़ी होती थी ना वो 16 रुपए की आती थी, बहुत सस्ती। फिर 16 से 18 हुई, 18 से 20 हुई, 20 से 25 हुई, 25 से फिर जब बढ़ते बढ़ते 40 तक हो गई, अरे बहुत महंगी हो गई। लेकिन वो साड़ी ऐसी थी जो कॉटन और थोड़ा सिल्क मिक्स हुआ करती थी। बड़े दादी दीदी भी वही पहनते थे, लेकिन वो जितनी धोते थे इतनी वाइट होती थी। ज्यों ज्यों धुलाई करो पुरानी होती जाती थी, वाइट होती जाती थी। तो उस समय हम लोग जब 16 रुपए 20 रुपए वाली भी साड़ी पहनते थे, तो लोग बोलते थे ब्रह्मा कुमारियों के कपड़े तो विदेश में धुलाई होते हैं। अभी भी कई लोग जब हमारे कपड़ों को देखते हैं, तो बहन जी आप इसको मेंटेन कैसे करते हो, आप कौन सा साबुन यूज करते हो, कहते हैं ना। ये हमारी विद्यालय की पैटर्न है, स्वच्छता विद्यालय की पैटर्न है। कोई भी वीआईपी आता है वो हमारा ये रिमार्क देखता है। एक बार बाबा ने मुरली में कहा कि तुम जब किसी वीआईपी से मिलने जाते हो तो मोटर में बैठ के जाओ, क्योंकि तुम कोई फकीर यानी नहीं हो, क्योंकि लोगों के अंदर इतना देहभान है, इनकी मेंटालिटी इतनी कमजोर है कि अगर कोई साधारण को देखेंगे तो समझेंगे हमसे कुछ लेने आया है। समझते हैं ना सर? तो बाबा ने हमको इसमें भी रॉयल्टी सिखाई है। राखी बांधने जाते हैं ना, तो वीआईपीस के पास जाते हैं तो हमारे आगे आगे कोई साधु लोग होते हैं ना, वो भी वो ब्राह्मण लोग घूमते रहते हैं राखी बांधने के लिए, हमारे से पहले बांध के गए होते हैं। लेकिन जब बहनों को देखते हैं वीआईपीस तो रिस्पेक्ट करते हैं, ये उनके ऊपर छाप रहती है कि ये कोई हमसे लेने नहीं आए हैं, लेकिन हमको ब्लेसिंग देने आए हैं। तो ये बाबा ने हमको हर बात के अंदर सिखाया है। तो जब आज मुरली के अंदर आया तुम्हें फैशन नहीं करनी है, तो कईयों ने इसको ये मार्क किया कि बाबा ने ये मना किया है, लेकिन बाबा ने हमको देव भान का श्रृंगार मना किया है। देव भान में आकर के आजकल लोग कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसे बाल बनाते हैं, जो जिसका नहीं ध्यान जाना होगा वो भी वहां जाएगा, तो उसके मन बुद्धि को खराब करने का बोझ उस आत्मा पर चढ़ता है। हमने कोई ऐसी एक्शन की जिससे उसका आकर्षण हुआ, उसका मन भ्रमित हुआ, वो हमें योग लगाने नहीं देगा। बाकी तो बाबा ने कहा है कि जो बच्चे दिल से मुझे कहते हैं मेरा बाबा, अभी एक मुरली में बाबा ने अंडरलाइन करवाई, क्या करवाया, मेरा बाबा, जो दिल से कहता है उसके लिए बोला भले महलों में रहो, खाओ पियो मौज करो, लेकिन किसको बोला, जो दिल से बाबा को बोलता है। तो इसके लिए बाबा की हर पॉइंट को हम डीपली समझ करके उस पर पुरुषार्थ करें। हर बाबा ने आज जो बोला, क्यों बोला, किसके लिए बोला और इससे मुझे क्या उठाना है, ये एनालाइज हमें खुद को करना होगा। मुरली में पॉइंट तो लिखते हैं ना रोज, ज्ञान योग धारणा सेवा सब लिखते हैं, लेकिन हर सब्जेक्ट में मेरे लिए क्या था वो एनालाइज करना है। तो आप लोग सभी यहाँ आए हो कोई विशेष शुभ संकल्प के गिफ्ट बाबा को देकर जाएंगे, यहाँ आए हैं किसी को घर बार मित्र संबंधी तो याद नहीं आते हैं, आते हैं किसी को, किसी माताओं को अपना बेटा याद आता हो, पति याद आता हो, तो एक बार दादी जी ने बहुत अच्छी पॉइंट बताई थी कि तुमको योग में कोई भी संबंध याद आया, माना वो संबंध तुमने बाबा के साथ नहीं जोड़ा है। तो इसके लिए फिर अभ्यास करो कि वो संबंध मेरे लिए एक वीक पॉइंट है, वो संबंध मुझे बाबा के साथ कैसे जोड़ना है। कई लोग कहते हैं बहन जी आपके चेहरे पर ग्लो बहुत है, कहते हैं ना बहनों के लिए कि आपके चेहरे पर खुशी बहुत है, ग्लो बहुत है। किस चीज का ग्लो है? पवित्रता का ग्लो है, गुणों का ग्लो है, बाबा की पालना का ग्लो है, बाबा के आशीर्वाद का ग्लो है। कहते हैं ना देवी देवताओं को भी श्रृंगारा हुआ दिखाते हैं, लेकिन किसी की भी नजर उसके गहनों पर नहीं जाती है, उनके कपड़ों पर नहीं जाती है, उसके पूजनीय रूप पर जाती है। तो बाबा ने हमें ये सिखाया है कि जब तुम सारे संबंध मेरे साथ जोड़ देते हो तो एक एक जो संबंध की रचना है वो तुम्हारे अंदर भरती है। जब वो रचना हमारे अंदर भरेगी तो हमारा पूजनीय रूप जब कोई देखेगा तो क्या देखेगा? ये हमारे अपने हैं। कोई मिलेगा वो कहेंगे ये तो हमारे अपने हैं। जैसे देवताओं के मंदिर में जाते हैं तो लगता है ना देवता हमारी इष्ट देवी है, हमारे इष्ट देवता हैं। शिव बाबा के मंदिर में हम जाते हैं तो क्या लगता है हमें? ये तो भक्ति कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, लेकिन हम साक्षी होकर खड़े रहते हैं तो क्या लगता है? ये बाबा हमारा अपना है, ये हमारा बाबा है, लगता है ना? चाहे शिवलिंग को देखो, बिंदु को देखो, मंदिरों में देखो, कहीं किसी के घर में देखो, तो ये हमारा बाबा अपना है। अपना क्यों लगता है? क्योंकि हमने उसको मेरा बाबा कहा, वो संबंध जोड़ दिया। तो एक बाबा का तो संबंध जोड़ा है लेकिन सर्व संबंध नहीं जोड़े हैं, इसलिए बीच बीच में हमारा मन डाइवर्ट होता है, खींचता है, कभी लौकिक चीजों ने खींचा, कभी कोई संबंधों ने खींचा, कभी कोई परिस्थिति ने खींचा। कहेंगे बहन जी बात ही ऐसी है ना, तो थोड़ी याद तो आएगी। एक बहुत सुंदर बात है कि एक संत थे, वो एक झाड़ के नीचे मस्त भक्ति कर रहे थे, साधना कर रहे थे। उस समय एक बहुत शक्तिशाली राजा वहां से पास हुआ, वो रुक गया कि इस साधु के पास, इस संत के पास कुछ भी नहीं दिखता है, एक छोटी सी पोट की बाजू में पड़ी है, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी कितनी है। जितनी मेरे पास सब कुछ प्राप्त होते हुए भी खुशी नहीं है, इतनी इस संत के पास कैसे है? जब वो संत को पूछा तो संत ने कहा महाराज खुशी वस्तुओं से नहीं मिलती है, खुशी ध्यान से मिलती है, साधना से मिलती है। तो राजा ने कहा अगर मैं तुमको लाखों अशरफियां दे दूं तो उसने कहा महाराज जो चीज मुझे भीतर से नहीं बदल सकती है उसकी मुझे क्या आवश्यकता। राजा बहुत खुश हो गया, तो कहा तुम्हारे पास धन क्या है? कहा मेरे पास धन है शांत मन, संतुष्ट हृदय और ईश्वर की याद। ये मेरा सबसे अमूल्य धन है। इस धन के आगे मुझे कुछ भी कीमती नहीं लगता है। राजा को भी सबक मिला, वो भी समझ गया सचमुच खुशी का साधन कोई बाह्य नहीं है। इसीलिए बाबा ने कहा तुम्हें अपने रूहानी रूप को स्पष्ट करना है। तुमको कोई देखे तो मस्ती वाला देखे कि ये तो अल्लाह लोग है। मुरली में बाबा कहते हैं ना कि तुमको कोई देखे तो लगे अल्लाह लोग है। जिसको दादी जी कहती थी खाली जेब बादशाह, जेब में कुछ नहीं है लेकिन फिर भी हम बादशाह है। हमारे चेहरे पर रूहानी फकूर है, इसके लिए हमें कोई साधनों की, श्रृंगार की, वस्तुओं की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन हमारा जो आंतरिक पुरुषार्थ है वो हमारे चेहरे पर ग्लो करता है, दूसरों को भी प्रेरणा मिलती है कि अगर सुखी जीवन जीना है, संतुष्ट जीवन जीना है, सर्व संपन्न जीवन जीना है तो इसके लिए धन के पीछे जाने की, वस्तुओं के पीछे जाने की आवश्यकता नहीं है। बस एक ईश्वरीय ज्ञान की मस्ती, योग की मस्ती, उसमें ही हमें सब कुछ मिल जाता है, मिलता है ना। देखो आप सुबह मुरली सुन कर के जाओ तो सारा दिन घर में खुशी रहती है ना, और किसी दिन नहीं गए तो खालीपन महसूस होता है ना, कुछ हमने खोया है या आज मुझे कुछ प्राप्त नहीं हुआ है। ये प्रैक्टिकल है क्योंकि बाबा हमें रोज 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 मुरली सुनाते हैं, वो तैयार कर रहे हैं, क्योंकि समय ही ऐसा है, परिस्थितियां ऐसी है। इसके लिए वो समय ही चला गया कि जो हम धीरे धीरे अलबेले होकर चलते थे, थोड़ा दुनिया का भी आनंद लिया, थोड़ा इस तरफ का भी आनंद लिया, अभी वो समय नहीं है। अभी केवल हम ज्ञान भी बहुत सुनाते हैं लेकिन इतनी अशांत आत्माएं हैं, इतने अंदर से वो खाली है, जो हम उसको सुनाते हैं ना वो अंदर जाता ही नहीं है, क्योंकि उसके अंदर वही विचार चलते हैं। जैसे देखो टीवी है, वहां से तो रिले आ रहा है लेकिन टीवी का स्विच ही ऑफ है तो कहां से सीन दिखाई पड़ेगा, कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा। ऐसे आत्माओं का स्विच अभी ऑफ है, वो अपनी चिंताओं में, अपने ख्यालों में, अपनी परिस्थितियों में उलझे हुए। अभी उनको जगाने का एक ही तरीका है, अपनी रूहानियत की झलक दिखाए, वो उसको दिखाई पड़ेगी, उसको एक्सेप्ट करेंगे वो। हमारे पास एक सन्यासी है, कितने सालों से घर बार छोड़ा हुआ है, लेकिन वो रोज आता है, उसको बहुत अच्छा लगता है। कोई भाई मुरली पढ़ता है ना, वो बाजू में बैठ के सुनता है। तो बाबा कोई धारणा की बातें करते हैं, अव्यक्त वाणी में गहराई की बात होती है, तो बोलता है ये तो बहुत मुश्किल है, ये कठिन है, ये प्रैक्टिकल नहीं है। तो हमें विचार आता है कि जिसने इतने सालों से घर बार छोड़ दिया है, उसका किसी लौकिक से रिश्ता नहीं है, आश्रम में रहता है, तो भी उसको कठिन लग रहा है। और बाबा ने हमको इतनी ताकत भरी है। कोई बाबा का बच्चा कहेगा कि मुरली में जो बाबा कह रहे हैं वो कठिन है? नहीं, उसको वातावरण अच्छा लगता है। वो कहता है मैं दूसरी जगह जाता हूँ ना, अच्छा नहीं लगता है, मैं यहाँ आके बैठता हूँ ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, आपकी बातें सुनता हूँ ना, वो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मुझे ये सब करना मुश्किल लग रहा है। तो बताओ, उस समय हमको बहुत गर्व होता है कि बाबा हमको कितना शक्तिशाली बनाता है, इतना अलर्ट बनाता है कि हम जब मुरली सुनते हैं तो हमको ऐसे लगता है बाबा दर्पण दिखा रहा है, लगता है ना, और मेरे में क्या कमी है वो हम रोज रोज भरने की कोशिश कर रहे हैं। तो बाबा जब कहता है कि तुम इन सन्यासियों से भी महान हो, तुम धर्म गुरुओं से भी महान हो, वो प्रैक्टिकल में लगता है, वो अंदर से ये बाबा की बात याद आती है। ये ऐसे नहीं समझना कि ये कोई मधुबन की बात है व सेंटर की बात है, नहीं, हर व्यक्ति उसके लिए जिम्मेवार है, बाबा का हर बच्चा उसके लिए जिम्मेवार है, क्योंकि बाबा ने ऐसे नहीं कहा है कि अमुक लोग ही देवता बनेंगे, अमुक लोग ही ये पद के अधिकारी हैं। बाबा ने हर बच्चे के लिए ये स्कीम खोली हुई है, खोलिए ना, कोई भी बन सकता है इसके लिए। वो जैसे नहीं कहा, एक सन्यासी के पास दो मटके थे, वो रोज दो मटके लेकर के जाता था, एक तो भरा हुआ होता था, दूसरे में थोड़ा सा छेद था, वो लीकेज था। वो सारे रास्ते बहते 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 जाता था। उसने संत को बोला कि मैं आपके योग्य नहीं हूँ, मैं पूरा पानी तो ला नहीं सकता हूँ, ये आपके काम का है, मैं आपके काम का नहीं हूँ। तब संत ने उसको कहा कि तुम्हारा पानी गिरता है वो तो तुमने देखा, लेकिन जिस रास्ते से हम आते जाते हैं उसके किनारे तुमने नहीं देखा। उसने किनारे देखा ना, तो बहुत फूल उगे हुए थे, तो कहा तुम्हारी बूंद बूंद से ये फूल बगिया तैयार हो गई है। ऐसे हम भी कोई अपने को छोटा नहीं समझे, हम सब बाबा के बहादुर बच्चे हैं, शक्तिशाली बच्चे हैं। एक एक संकल्प से हम विश्व का कल्याण कर सकते हैं, अपने परिवार को एक एग्जाम्पल दिखा सकते हैं, वो देख करके भी वो बाबा के बन सकते हैं। भले ज्ञान नहीं सुनेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन बाबा ने आपको वहाँ शोकेश में रखा है। एक एक बाबा का बच्चा शो पीस है। लोग किसको देखेंगे? केवल सेंटर के दीदियों को तो नहीं देखेंगे ना, आप लोगों को देखेंगे। आते हैं ना तो कहते हैं, अरे हमारा फलाना रिलेटिव है ना, वो बहुत सालों से आपके पास जाता है। कहते हैं ना, उस प्रभाव से आते हैं। जब माउंट आबू आते हैं तो उनको सारा याद आता है। जब अपने स्थान देखते हैं तो पूरा याद, हमारा फलाना आपके पास जाता है, वो हमको हमेशा बताता है, तो याद आता है। भले आपको लगे कि मैंने सुनाया, उसने सुना नहीं, इग्नोर कर दिया, लेकिन अंदर रहता है। जब वो आते हैं तो उसको उस संकल्प को पानी मिलता है, तो वो सारी बातें याद आती है। फिर ध्यान से सुनते हैं, क्या वो बता रहे थे, तब हमने नहीं सुना। ऐसे बहुत हैं जो इस प्रकार के बाबा के बच्चे बन जाते हैं। तो उस हमारे छोटे से प्रयास ने, हमारे छोटे से संकल्प ने, हमारी छोटी सी भावना ने उस आत्मा का कल्याण किया। तो जब भट्टी में आए हो, अपने अंदर वो डायमंड घिसते है ना, डायमंड आता है तो कैसा होता है, पत्थर जैसा, फिर थोड़ी घिसाई होती है, जितनी घिसाई उतनी शाइनिंग। ऐसे हर भट्टी से कुछ शाइनिंग आती है। सेंटर पर भी भट्टी होती है, कहीं और स्थानों पर भी होती है, और विशेष मधुबन में चांस मिलता है, और उसमें भी विशेष पांडव भवन में चांस मिलता है। स्पेशल है ना, क्योंकि बाबा की और दादियों की कर्म भूमि है। जिन्होंने भी बाप दादा को देखा, कहाँ देखा, मधुबन की बगिया में देखा। दादियों के चरित्र कहाँ देखे, यही देखे। दादियों ने जो प्रैक्टिकल पालना दी, कहाँ दी, यही दिया। क्योंकि कई हैं जिन्होंने बाप दादा को तो साकार में नहीं देखा, लेकिन दादियों को तो देखा, दादियों की पालना को देखा। तो इस वातावरण में उनकी पुरुषार्थ की, उनकी भावनाओं की, उनके कर्म की पूरी खुशबू फैली हुई है। जितना हम उसको स्वीकार करें, कितना हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, वो हमारे ऊपर है। एक्सेप्ट वही करेगा, अनुभव वही करेगा जो अपनी बुद्धि को एकाग्र करेगा, मस्त करेगा। भट्टी में आते हैं कि इसलिए मस्त होने के लिए आते हैं ना। एक बार दादी जी ने भट्टी रखी थी, तो दादी जी क्या करते थे, बहुत मस्ती चढ़ाते थे गीतों से, इससे अंदर बहुत 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 भरपूर करते थे। फिर कहते थे, तुमने बहुत अच्छी भट्टी किया, बहुत परिवर्तन किया। कहते हाँ, क्यों नहीं। फिर दादी क्या करती थी, जिससे नहीं बनती थी ना, एक दूसरे को सामने खड़ा कर देती थी। एक दूसरे को देखते हो तो क्या संकल्प आया। अगर तुमको वो वाइब्रेशन भी आता है, वो संकल्प भी आता है, माना भट्टी की कमी है, और करो तपस्या। ये एक थर्मामीटर है कि जितना हम आत्मा घिसती है, हीरा घिसता है, जितनी शाइनिंग चमकती है, इतना हमारे मन में किसी के प्रति भी कोई भी संकल्प होता है वो समाप्त हो जाता है। जब नए लोग आते हैं, विजिटर कोई नया आता है, तो हम क्या कहते हैं कि आपसे ज्यादा नहीं होता है तो मत करो, लेकिन सुबह थोड़ा 5-10 मिनट भगवान को याद करो, शिव बाबा को गुड मॉर्निंग करो और सारे दिन के लिए एक पॉजिटिव संकल्प करो, और रात को सोने से पहले वो चेक करो और आपकी स्लेट को साफ कर दो। कहते हैं ना कि आपसे ज्यादा नहीं होता है तो इतना करो, 5 मिनट ही करो, ऐसे कहते हैं ना, क्योंकि उनकी ज्यादा ताकत नहीं है या अपने को बिजी बताते हैं। बाबा हमें भी यही कहता है। हमारे पास कई टूरिस्ट आते हैं ना, तो क्या कहते हैं, हम उनसे व्यसन छुड़वाते हैं, आप बॉक्स में डालो, आपकी कोई बैड हैबिट्स डालो, कोई विकार डालो, कोई व्यसन डालो, तो कई बड़े मजेदार होते हैं। कहते हैं हाँ हाँ बहन जी क्यों नहीं, हम पिछले साल आए थे ना तब भी डाल के गए हैं, अभी भी डाल देंगे। समझ गए ना। तो बाबा भी हंसता होगा ना हमारे ऊपर कि बच्चे हर बार प्रॉमिस करते हैं, जब वो ऐसा बोलते हैं तो हमें हंसी आती है। जब हंसी आती है तो उस समय हम सोचते हैं कि हमको इनके ऊपर हंसी आती है, तो बाबा को भी हमारे पर हंसी आती होगी कि बच्चे हर बार अच्छा अच्छा संकल्प करते हैं, बहुत अच्छी अच्छी रूढ़िहान करते हैं, अच्छी अच्छी प्रॉमिस करते हैं, पुरुषार्थ की लगन दिखाते हैं, थोड़ी अग्नि तेज भी करते हैं, फिर ठंडे हो जाते हैं, फिर दोबारा कहेंगे बाबा अभी जरूर करेंगे। अभी भट्टी में आए हो तो बाबा को निश्चिंत करके जाना कि अभी दोबारा ये संकल्प नहीं करना पड़ेगा, तो बाबा भी खुश होगा। यही हमारी भट्टी की सफलता है ना। कोई ना कोई एक बात, ज्यादा नहीं, एक विशेष संकल्प का परिवर्तन यहाँ से करके जाना, ये बाबा को गिफ्ट दे के जाना, बाबा के कमरे में जाते हो तो लेटर लिखते हो ना, लिखते हो सभी, सब लिखते हैं। जब हम कहते हैं ना किसी VIP को मधुबन दिखाते हैं, तो हम कुटिया में ले जाते हैं, बाबा के कमरे में ले जाते हैं ना, तो उनको कहते हैं कि हमारे सभी सेंटर्स के जो भी आते हैं वो यहाँ पर लेटर लिखते हैं और कुछ न कुछ अपना संकल्प लेते हैं और गॉड को अर्पित करते हैं, तो वो खुद कहते हैं कि हमको भी दो, हम भी करेंगे, उनको भी प्रेरणा मिलती है। तो ये इस भट्टी का सफल तब है जब हम कोई एक विशेष परिवर्तन को अपने साथ ले जाएं। आप सभी ने तो बहुत अच्छे अच्छे अनुभव किए होंगे, 2 दिन से बहुत अच्छे अच्छे क्लासेस मिलते हैं ना, हर क्लास के अंदर अलग टॉपिक होती है, तो वो अलग टॉपिक की अलग प्रेरणा होती है, तो 3 दिन में कितने क्लासेस मिलेंगे, अनेक मिलेंगे, कम से कम 12 तो मिलेंगे, 10-12, तो 10-12 लेसन आपको मिले, उस 10-12 लेसन में से कितने लेसन में पास होके जाओगे, स्कूल में सब्जेक्ट बहुत होते हैं, सब्जेक्ट के अंदर लेक्चर भी बहुत होते हैं, लेकिन एग्जाम सभी का सार मिलकर के होती है। प्रश्न थोड़े होते हैं, उन प्रश्नों में हमें पास होना होता है। तो ये सोचना कि मैंने इतने क्लास में से कौन सी विशेष बात पर्सनल उठाई, नोट करने के लिए नहीं। नोट करने के लिए तो पूरे पूरे क्लासेस हैं, वो तो आपको ऑडियो भी मिल जाएगा और उसका पीडीएफ भी बन जाएगा, लेकिन इसमें से पर्सनल मुझे क्या मिला, व्यक्तिगत रूप की बात है। परिवर्तन करने के लिए केवल लेक्चर काफी नहीं होता है, वो जो मैंने बात एक उठाई उसके ऊपर मेरा पर्सनल अभ्यास, वो यहां ही करके जाना होगा। वहां तो जाके करेंगे ही, लेकिन ये अभ्यास, ये प्रैक्टिस यहां करनी पड़ेगी, क्योंकि यहां आपको स्थान का भी सहयोग है, वातावरण का भी सहयोग है, और अनेक महान आत्माओं के वाइब्रेशन का भी सहयोग है। वो सहयोग से इजी होता है। फिर जाएंगे लौकिक कारोबार करेंगे, फिर वो बात थोड़ी डिम भी हो सकती है, लेकिन अगर मैंने इसको परिवर्तन कर दिया तो वो मेरी धारणा हो गई, कोई चीज मेरी हो गई, वो जाएगी। यहां से आप कोई चीज खरीद के जाओगे, कुछ आर्टिकल खरीद के जाओगे, कोई वस्तु खरीदते हैं ना, वो आपकी हो गई, वो वहां यादगार रहेगी कि मधुबन से हम ये खरीद कर आए, ये वस्तु लेकर आए, ये आपकी हो गई। लेकिन ये जो धारणा है, ये पर्सनल मेरी धारणा, वो मेरी हो गई, वो लिख के जाना। आज इस क्लास से मैंने क्या लिया, क्या धारणा की, और उस धारणा को मैंने अपने में कितना लाया। तो वो उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े वो संभाल के रखना, गुम नहीं कर देना उसको। ये धारणा है ना, बहुत अमूल्य होती है, मूल्यवान होती है। हम लोग जब यहाँ आए ना तो दादी जी राखी बांधती थी, दादी जी के बाजू में हमें धारणा विशेष संकल्प रखना होता था, वो राखी पक्की होती थी और दादी ऐसे मजबूत करती थी कि आपने जो संकल्प लिया, धारणा की, अपने हाथ से लिखा, ये आपकी राखी हो गई। तो ये राखी बाबा के पास बांध के जाना, बाबा आपको राखी बांधता है, वो आपकी हो गई। फिर काउंट करना, क्योंकि और भट्टियां भी होंगी, सेंटर्स पर भी होती है, फिर उसको केवल चेक करते रहना कि मेरी ये मूल्यवान वस्तु गुम तो नहीं हुई है। तो बाबा के सभी बहुत लगन वाले बच्चे यहाँ तक पहुँचते हैं, सबको तो चांस नहीं मिलता है ना, बहुत थोड़ों को चांस मिलता है, छोटा ग्रुप है तो बहुत कुछ ले सकता है। बाबा मिलन में आते हो, वो तो मेला होता है, बहुत बड़ा संगठन होता है, उसमें संगठन का अनुभव करके जाते हैं, बड़े परिवार का अनुभव करके जाते हैं। बाबा का बेहद कितना है, बाबा कितने बेहद बच्चों का बाबा है, बाबा विश्व कल्याणकारी कैसे है, ये अनुभव करते हैं। अब ये जो भट्टी में बैठते हैं तो क्या अनुभव करते हैं, इन धारणाओं का अनुभव करते हैं, विशेष अभ्यास का अनुभव करते हैं। और जितना ये अभ्यास हमारा अपना हो जाता है ना, उतनी मस्ती होती है, खुशी होती है, और वो चेहरे पर ग्लो करेगी। बाबा ने कहा ना, फैशन नहीं करना, लेकिन वो फैशन से ज्यादा आकर्षित करेगी कि ये लोग कहाँ से होके आए हैं और क्या करके आए हैं। लोगों को ताजुब होता है ना कि आप लोग सुबह सुबह जाते हो, क्या करते हो, क्यों जाते हो, पूछते हैं ना। अरे हम तो अभी उठे भी नहीं हैं और आप लोग सुबह सुबह तैयार होकर के कहाँ चले जाते हो। वो लोग जब उठते हैं उससे पहले हमारा आधा दिन खत्म हो गया होता है ना? लेकिन उन्हों को क्या पता कि हम कहाँ जाते हैं, हमको क्या मिलता है और हम क्या झोली भर के आते हैं। तो यहाँ भट्टी में आए हो तो बाबा को शुक्रिया करके जाना, थैंक्स देके जाना। एक तो आपको यहाँ बुलाया उसका थैंक्स, सजाया उसका थैंक्स, भरपूर किया उसका थैंक्स, और मधुबन की इतनी पालना मिली उसका थैंक्स, और हर सब्जेक्ट को अपना बनाया, हर धारणा को अपना बनाया। वो अपना बना के हम ले जा रहे हैं, वो हीरा हमारे अंदर है, वो गिफ्ट हमारे अंदर है, उसको हम अपने साथ ले जा रहे हैं, उसका थैंक्स। कोई गिफ्ट देता है तो थैंक्स तो होती है ना। तो बाबा के घर से इतने बड़े पुरुषार्थ की, इतने बड़ी धारणा की और इतने उमंग की जो गिफ्ट मिलती है, तो बाबा को थैंक्स तो बनता है। ओम शांति। अभी 3 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे। मेरा शरीर का नाम है वर्षा। मैं यहाँ नक्की लेक पर, म्यूजियम है ना बाबा का, पुराना स्थान है जो साकार बाबा ने अपने संकल्पों से खरीदा है। बाबा खुद खरीद के गए हैं और बाबा की और बड़े महान आत्माओं के वाइब्रेशन से बना ये स्थान है, सेवा स्थान। वहाँ सेवा का मौका मिला है। मैं वहाँ 51 ईयर्स से सेवा करती हूँ। मधुबन में रहने का मुझे सौभाग्य मिला है। आप सब आए हो, म्यूजियम आए हो सभी, जिसने नहीं देखा है वो आ जाना।